ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विशेषक अखिलेश सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। इन राज्यों में 7 से 30 नवंबर के बीच मतदान होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इस मुद्दे पर अधिक चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश सिंह। अखिलेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
जी, थैंक यू सो मच।
अखिलेश जी, चुनाव आयोग ने इन चुनावों के लिए कई व्यवस्थाएं की हैं, जिनमें युवाओं पर ध्यान केंद्रित करना और मतदाता सूची को समावेशी बनाने पर विशेष जोर देना शामिल है। आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं क्या हैं?
दो तीन चीजें काफी इंटरेस्टिंग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल करके आई। एक तो जो जेंडर गैप था वोटर्स में, वो भी काफी कम हुआ है। विशेष रूप से अगर आप राजस्थान की चर्चा करें, जहां पर एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है सदियों से, दशकों से, वहां पर अगर जेंडर गैप कम हुआ है, लगभग बराबर हो गए हैं लगभग सारी स्टेट्स में मेल फीमेल रेशियो, तो एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव डेवलपमेंट है हमारे देश के विकास के लिए। क्योंकि इसमें अगर समावेशी विकास होना है तो समाज के हर वर्ग का, महिला का, पुरुष का, सबका बराबर की हिस्सेदारी हो, और एक ऐसा प्रोसेस जिससे पूरे देश का भविष्य निर्धारित होता है, अगर उसमें दोनों ही मेल फीमेल का उसमें भागीदारी होगी तो एक बहुत ही अच्छे संकेत है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बात निकल करके आई कि पहले की अपेक्षा जो जेंडर गैप था वो काफी कम हुआ है, ए प्लस जो यंग वोटर्स हैं, नए वोटर्स हैं, उनकी तादाद में काफी बढ़ोतरी हुई है, वो भी एक बहुत अच्छे संकेत है। क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, आज के जो नौजवान है, उनके विचार क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, उनके किसके पक्ष में उनका वोट है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ना है तो यूथ की जो हमारी जो सोच है, जो उनकी समझ है और जो उनकी अपेक्षाएं हैं, वो भी उसमें इसमें रिफ्लेक्ट होंगी कि वो किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को चाहते हैं। तो ये जो चीजें निकल करके आई, एक तो यूथ का पार्टिसिपेशन उसमें, दूसरा जो जेंडर गैप कम हुआ है, ये सब काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। रही बात जो लॉजिस्टिक्स की, एक बड़ी अच्छी बात इलेक्शन कमिश्नर ने कही, सीईसी ने कही कि कुछ लॉजिस्टिकल इश्यूज होते थे रिमोट एरियाज में, जहां पर जो ऑफिशियल्स होते हैं इलेक्शन कमीशन को, उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है लोकल्स के ऊपर, उसको भी उन्होंने इंश्योर किया है कि वो भी सेल्फ डिपेंडेंट होकर के जाएं, कि किसी तरह का कोई आरोप ना लगे कि हमने किसी से किसी भी तरह का कोई भी फेवर लिया है। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से काफी इम्प्रूव करने की कोशिश की गई, एंड और हम लोगों को सभी को इसको एक पॉजिटिव तरीके से वेलकम करना चाहिए। जी,
जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की आज घोषणा की गई है, वे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण है। क्या आप इन्हें अगले साल में होने वाले आम चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं, जैसे कि बहुत लोग कह रहे हैं?
नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, क्योंकि 2018 में ठीक ऐसे ही हुआ था। 3 राज्यों में बीजेपी बिल्कुल तीनों चुनाव हार गई थी, तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, और तीनों स्टेट्स बीजेपी लूज कर गई थी, वहां पर उनकी सरकार चली गई थी। उसके कुछ ही महीनों बाद लोकसभा के चुनाव हुए और बीजेपी ने स्वीप किया था लोकसभा इलेक्शंस में, लगभग इन तीनों स्टेट्स को स्वीप किया था। तो हम उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहे हैं कि अगर हम असेंबली इलेक्शंस को लोकसभा पोल्स से जोड़ें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये 2018 के चुनाव ने दिखा दिया था। तो सेमीफाइनल तो बिल्कुल ही नहीं मान सकते हैं। कारण ये है कि देखिए, इश्यूज बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है। तो इश्यूज अलग अलग हैं, पार्टीज अलग अलग हैं, और बिल्कुल ही ये रीजनल इश्यूज पर चुनाव होता है। ये निश्चित तौर पर अगर हम देखें जो लोकसभा इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से कि 1/6 वोटर्स कंट्री के इसमें पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे एक निश्चित रूप से पता चलेगा कि वोटर्स की मानसिकता क्या है, उनके विचार क्या है। लेकिन ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा जो लोकल लीडरशिप है पार्टीज की, जो उनके इश्यूज हैं, जो उनका कास्ट इक्वेशंस है, जो उनका काडर में जिस लेवल का एंथुजियाज्म है, ये सारे फैक्टर्स ज्यादा मायने रखेंगे, ना कि हम उसको 2024 के कॉन्टेक्स्ट में देखें।
तो आप ये मानते हैं कि जब मतदाता वोट देने जाते हैं, तो जब क्षेत्र स्तर पर वोट करते हैं, विधानसभा के लिए वोट करते हैं, और जब लोकसभा के लिए वोट करते हैं, तो वो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं कि हमें राज्य स्तर पर क्या चाहिए और हमें राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर क्या चाहिए?
इसमें देखिए एक बीजेपी को थोड़ा सा एडवांटेज जरूर है, क्योंकि जो भी नेशनल लेवल पे जो नेशनल लीडरशिप है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, उनके जो भी इनिशिएटिव्स हैं, चाहे आप नेशनलिज्म की बात करें या जो वेलफेयर इनिशिएटिव्स हैं उसकी बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, तो उसका नेचुरली उसको उनकी पार्टी को फायदा होगा। और एक उनका बहुत लंबे समय से जो डबल इंजन का प्लान चलता है, तो उनका ये कहना है कि अगर आप स्टेट में सेंटर में दोनों में एक ही पार्टी की सरकार हो, बेहतर कोऑर्डिनेशन होता है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, उसी बेसिस पर उसी को एक मेजर पोल प्लैंक मान करके वो वोट भी मांगते हैं। तो नेचुरली बीजेपी को एक एडवांटेज ये है कि मोदी सरकार की भी उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करके, और ऐसे स्टेट जहां पर बीजेपी की दोनों जगह सरकारें, राज्य में भी सेंटर में भी, तो ऐसे राज्यों के एग्जाम्पल्स दे करके कि किस तरह से जो भी सरकार की जो इनिशिएटिव्स हैं उसको बेहतर तरीके से लागू किया गया है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स देकर के निश्चित रूप से वोटर्स को इम्प्रेस करने की, उनको खुश करने की कोशिश करेंगे, उनका वोट मांगेंगे। लेकिन उसका कितना फायदा होगा ये 3 दिसंबर को ही जब रिजल्ट्स आएंगे तो ही पता चलेगा। हाँ ये जरूर है कि हाल फिलहाल के जो भी चुनाव हुए हैं, असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, स्टेट्स के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें ये देखा गया है कि लोकल इश्यूज ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले किए हैं बनस्पत की नेशनल इश्यूज।
हाल ही में बिहार में हुए जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी हुई है और आज कांग्रेस ने भी कह दिया है कि उसकी सरकार वाली राज्यों में ये जनगणना करवाई जाएगी। इसको देखते हुए इन चुनावों में, और क्योंकि जो 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है वहां पर 2 में कांग्रेस की सरकार ऑलरेडी है, तो ये देखते हुए इन चुनावों में जाति जनगणना कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है?
देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस ने इसको अपना सबसे बड़ा जो सेंट्रल इश्यू है उसके रूप में इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूरे इस अपनी डिमांड को। आज उनकी वर्किंग कमेटी ने रिजोल्यूशन भी पास किया है कि जहां जहां पर हमारी सरकार है वहां पर हम जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन इसमें देखिए कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस इस मायने में कि अगर हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात करें, 1992 में पूरे देश में उसको लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, उस समय कांग्रेस ने ही इसका सबसे ज्यादा विरोध किया था और वो वीपी सिंह की सरकार आई थी जिसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू की थी। तो इस तरह से कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जो कॉन्ट्रडिक्टरी इसमें जो भूमिका रही है वो भी सामने आती है। तो ये बड़ा उनके लिए कठिन होगा आम जनता को कन्विंस कर पाना कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड उनका एक प्लेज नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली है, मोदी जी ने बार बार बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी जाति अगर कोई है तो गरीब की है और जो भी इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं वो उनके वेलफेयर के लिए लिए हैं। तो उनका एक कॉन्फिडेंस है कि अगर हम हर वर्ग के ऐसे लोग जो कि लेस डेवलप्ड हैं, उपेक्षित हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो बहुत मुश्किल है ये कह पाना कि किस हद तक, ये चुनाव के नतीजों से ही पता चलेगा कि इसका आउटकम क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा पूरे चुनाव को। आज की तारीख में देश बदल चुका है, समाज की अपेक्षाएं बदल चुकी हैं और ये एक बहुत बड़ा पोल का मुद्दा होगा, चुनाव का मुद्दा होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता।
जी अगर अब हम खासकर राज्यों की बात करें जिन 5 राज्यों में हो रहे हैं, तो मैं पहले बात करना चाहूंगी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जहां इस वक्त कांग्रेस सत्ता में है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जैसे हमने कहा कि 2 जगह कांग्रेस की सरकार है, 1 जगह मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो ये कितने महत्वपूर्ण है ये देखते हुए कि पिछले वर्षों में, पिछले चुनावों में यहां के जो मतदाता हैं उन्होंने बारी बारी से ये बदलाव किए हैं अपने वोटिंग पैटर्न में, उन्होंने बारी बारी से अलग अलग पार्टियों को, कभी कांग्रेस को तो कभी भाजपा को एक मौका दिया है सत्ता में आने का।
देखिए राजस्थान में ये रिवाज रहा है, लगभग 3 दशक से ऐसा रहा है कि हर 5वें साल सरकार बदल जाती है, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। 2018 में जब मोदी जी की लहर थी पूरे देश में, उस समय भी बीजेपी को काफी नुकसान हो गया था, चुनाव वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, चुनाव भाजपा हार गई थी। तो वहां का एक बहुत ही एक टेंडेंसी रही है एंटी इनकम्बेंसी का, जैसे ही सरकार आती है लोग अपनी भावनाएं दिखाते हैं, वो एक सरकार के खिलाफ ही होता है और एक परंपरा सी चली आई है राजस्थान में कि हर 5वें साल पे सरकार बदल जाती है। छत्तीसगढ़ में लगभग 3 स्टिंट के बाद रमन सिंह चुनाव हारे थे 2018 में, उसी तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान 2018 में चुनाव हारे थे 3 कार्यकाल पूरा करने के बाद। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में स्थितियां दूसरी थी, वहां पर एक लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रही और लंबे समय तक सरकार रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि एक तबका खुश होता है तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी होता है जिसके अंदर एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, फटीग हो जाता है और वहां पर भी बीजेपी को नुकसान हुआ था, बीजेपी चुनाव हार गई थी। राजस्थान में एक परंपरा रही है बीजेपी ने पिछली बार कोशिश की थी उस परंपरा को तोड़ने की, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे और उन्होंने ये वहां के नेताओं को बार बार बोला था कि हमें इस रिवाज को तोड़ना है, हमें इस परंपरा को तोड़ना है, लेकिन पार्टी सफल नहीं हो पाई थी। आज जो भी वहां पर इक्वेशंस हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बीजेपी का कोई फेस नहीं है, ऑफिशियली किसी को भी अपना फेस के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया है। मध्य प्रदेश में जरूर निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी हैं तो एक मेजर फैक्टर है वहां पर, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में परिस्थितियां दूसरी हैं। पहली बार ऐसा है कि एक कलेक्टिव लीडरशिप की बात की जा रही है कि हम सभी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, आप देखिए कि बहुत ऐसे लोग हैं जो लोकसभा के सांसद हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी एक एक्सपेरिमेंट पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा है। उसका मकसद ये है कि ऐसी सीट्स जो कभी पार्टी जीत नहीं पाई है या जहां पर संघर्ष करती रही है, उन सीट्स को वापस जीता जाए, उन सीट्स को अपने झोली में डाला जाए। तो ये कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट, कितना सफल होता है, ये भी देखने की बात होगी। चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक और नई लिस्ट आई है। राजस्थान की जो पहली लिस्ट आई है आज, उसमें बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। डॉक्टर किरोरी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद हैं, सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर वो जयपुर की झोटवाड़ा सीट से चुनाव लड़ेंगे और उसी तरह से दिव्या कुमारी जो कि जयपुर राजघराने से हैं और राजसमंद से सांसद हैं, उनको भी जयपुर शहर के एक विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए उनको नामांकित किया गया है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ट्रेंड जरूर है, उसके फेवर में दिखाई दे रहा है, संभावना है कि बन जाएगी क्योंकि वहां पर ट्रेंड ऐसा है। बावजूद इसके वो कोई चांस नहीं ले रहे हैं और पूरी गंभीरता से इस चुनाव को लड़ रहे हैं।
तेलंगाना की बात करें तो एक ऐसा राज्य है जो अपने बनने से लेकर, उसकी स्थापना से लेकर 2014 से अब तक एक ही पार्टी, एक क्षेत्र पार्टी, केसीआर की पार्टी है, वो सत्ता में रही है, जबकि भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां अभी भी वहां अपनी जमीन खोजने की कोशिश कर रही हैं। तो आप इन दो बड़ी पार्टियों का स्कोप कैसे देखते हैं तेलंगाना में?
देखिए, तेलंगाना में भी अगर आप यूं कहें कि जिस तरह की बीआरएस और चीफ मिनिस्टर का जो वहां पर एक हेजिमनी रही है, डोमिनेंस रहा है, इस चुनाव में हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से एक ट्रायंगुलर कंटेस्ट होगा, वहां पर एक उनको एडवांटेज जरूर है क्योंकि ओवैसी एक बहुत बड़े फैक्टर है वहां पर, स्पेशली जो अर्बन एरियाज हैं, हैदराबाद का जो सीट्स हैं उनसे उनका संभावना है कि उनसे उनका अलायंस होगा, ऑलरेडी वहां पर अलायंस में है वो, लेकिन वहां पर ट्रायंगुलर कंटेस्ट होगा और जो डोमिनेंस पहले थी उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी आई है और उसको हम लोगों ने देखा है कि जो हैदराबाद, जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल इलेक्शंस हुए थे उसमें बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होकर के उभरी थी। चार उनके एमपीज भी चुनाव जीते जिसमें एक केंद्रीय मंत्री भी हैं, जी किशन रेड्डी जी। तो ये कहना कि वो बिल्कुल ही उसी मोमेंटम को रिटेन कर पाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाँ, इतना जरूर है कि अभी भी जो केंद्रीय पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक्चुअल क्या आउटकम होता है ये नतीजों के बाद ही पता चलता है।
मिजोरम सबसे छोटा राज्य है, सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव वहां पर?
पूर्वोत्तर के प्रति एक जमाना था, एक समय था कि हम उसको बिल्कुल एक अलग देखते थे, वो मेन स्ट्रीम में नहीं देखे जाते थे, लेकिन पिछले 8-9-10 सालों में जिस तरह से जो एक अलग मिनिस्ट्री बनाई गई, प्रधानमंत्री ने लगभग 50 से 55 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया, शायद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतनी बार, इतनी फ्रीक्वेंसी उनकी रही नॉर्थ ईस्ट के दौरों की, 450-450 बार केंद्रीय मंत्रियों ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनका दौरा किया है। तो ये तो अब नैरेटिव बिल्कुल चेंज हो गया है कि वो कोई आइसोलेटेड रीजन है, अब उनको पूरी तरह से, जिस तरह से वहां पर डेवलपमेंट हुआ है हाल फिलहाल में, लगभग सारे स्टेट कैपिटल्स जो है वो एरियल नेटवर्क में है, जहाज से उनकी कनेक्टिविटी हो चुकी है, रेल एक बहुत बड़ा इशू था वहां पर, उसका भी नेटवर्क हर जगह लगभग स्टैब्लिश हो गया है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और आज की तारीख में ये है कि उसको एक नेशनल पर्सपेक्टिव में भी देखा जा रहा है, वहां के भी जो आउटकम होंगे वो काफी इम्पोर्टेंट होंगे। ये निश्चित रूप से जरूर है कि आबादी कम है, वो एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो भी काफी अहम रखता है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब नॉर्थ ईस्ट काफी इस समय न्यूज में रहा है।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।
अभी आप सुन रहे थे पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।